الحمد لله والسلام على عباده الذين اتقوا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو جو ابھی آیت تلاوت کی گئی آیات، تو ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر تو ہم نے اپنی پچھلی مجلس میں جو جمعے کے دن ہوتی ہے پڑھ لیا تھا. پیچھے کی آیات کے بارے میں کافی ساری خلاصہ بھی دوبارہ ہو گیا تھا، خلاصہ تو خیر نہیں لیکن کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے تو ان کے اوپر بھی بات ہو گئی تھی. اب جو ہے ہم انشاءاللہ ان آیات کے معارف و مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو معارف القرآن جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 532 کے اوپر ہیں، 532. امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ اسکرین کے اوپر شیئر بھی ہو رہے ہوں گے. ہو گئے صفحہ. تو ان آیات کے معارف و مسائل سے پہلے ایک ذرا ترجمہ کوئکلی کر لیتے ہیں جلدی سے، کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، ایمان کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ مشائخ نے ماننے سے کیا، نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، کسی کی بات ماننا بغیر دلیل طلب کیے ہوئے. ٹھیک ہے، کہ ہم کیوں مانیں تمہاری بات، اس کی ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دو، ہمیں اس کی حقیقت دکھاؤ، پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. ٹھیک ہے، تو بغیر طلب کیے ہوئے اس طرح کی کوئی دلیل، کسی کی بات مان لینا اعتماد کرتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ کہلاتا ہے ایمان لانا. ٹھیک ہے، اصطلاحی لفظ اس کے لیے ایمان لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اعتماد کرتے ہوئے کسی کی بات مان لینا، یہ اس پر ایمان لانا ہے. چاہے جو ہے وہ شیطان کی بات مان لے، ٹھیک ہے، تو وہ شیطان پر ایمان لانا ہوگا. چاہے نبی کی بات مان لے تو وہ نبی پر ایمان لانا ہوگا. چاہے کسی اور انسان کی بات مان لے، ڈاکٹر کے اوپر ایمان لاتے ہیں سارے کے سارے، ڈاکٹر کے اوپر، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ کے فلانی آپ کو مرض ہے، آپ کو فلانا جو ہے وہ چیز سے افاقہ ہوگا، فلانا آپ کا علاج ہے. آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں دکتور صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ایمان لانا جو ہے یہ اس طرح سے ایک جنرل قسم کی ٹرم ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ اس بات پر ہے کہ آپ کس کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے کہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. اچھا، تو یعنی ایمان لانے سے جنت جہنم میں جانا نہیں ہوتا، بلکہ کس پر ایمان لے کر کے آنا، اس سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا، آپ نے ایک منٹ، یہ چیٹ ونڈو میری گم ہو گئی، کیا کر رہی ہیں؟ अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि हम हरगिज आपके ऊपर ईमान नहीं लेकर के आएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आप पर एतमाद नहीं करेंगे, जब तक कि आप हमारे लिए जमीन में एक चश्मा जारी ना कर दें, पानी का चश्मा। अच्छा, या ये कि तकून अलका जन्नतुन, या आपके लिए एक बाग हो जाए खजूरों का और अंगूरों का, और उसके दरमियान जो है ना आप नहरें चला दें, ठीक है, बाग के बीच में से जो है वो नहर चल रही हो, ठीक है, खजूर और अंगूर के बाग के बीच में से आपके लिए ऐसा कोई बाग हो, या ये कि आप हमारे ऊपर जो है ना वो आसमान टुकड़े टुकड़े करके गिरा दें, जैसा कि आप कहते हैं कि गिर जाएगा तुम्हारे ऊपर आसमान, तुम्हारे ऊपर जो है वो अजाब आएगा, तो भाई करके दिखा दीजिए आप ऐसा, या ये कि आप अल्लाह और उसके फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा कीजिए, कबील, ठीक है, हमारे किबला, किबला कहते हैं ना सामने वाली जगह को, जिस तरफ जो है इंसान रुख करके इबादत करता है उसको किबला कहते हैं, तो हमारे सामने कबील में ये फरिश्तों और अल्लाह को ला करके खड़ा कर दीजिए आप, या ये कि यकून अलग का बैत मिन ज़ुख़रफ़िन, या ये कि आपके लिए हो जाए एक सोने का बना हुआ घर, या आप आसमान पे चढ़ जाएं, यानी आप तस्वुर करें ना, आपसे आखिरी कोई इस किस्म की बातें करे, ठीक है ना, आपका बेटा, आपका बेटा, आप अपने बेटे को कहें कि बेटा तुम अगर इस चीज से नहीं बचोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, और आपका बेटा आपके सामने आकर के कहे कि आप पहले आसमान पे चढ़ के दिखाएं मुझे, या आप अपना घर जो है ना वो ऐसा बना के दिखाएं, ठीक है ना, आप तो यानी कहते हैं ना कि आपके तो पल्ले कुछ है ही नहीं, और आप जो है ना वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं मुझसे, आपका अपना सगा बेटा, आपकी अपनी सगी औलाद आकर के बेटी इस तरह की बातें करे आपसे आकर के, ठीक है ना, तो ये माँ अम्मी जान आपके तो पल्ले कुछ नहीं है, आपके पास तो ये भी नहीं है, आपके पास तो वो भी नहीं, और आप जो है ना वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आप ऐसी ऐसी चीजें कहती हैं मुझे, नबी अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे बोलते थे वो लोग आकर के कि तुम्हारे तो पल्ले कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं, तुम्हारे पास तो बाग भी नहीं, तुम्हारे पास तो नहर चलाने की चीज नहीं है, तुम जन्नत की हमें हरियालियां दिखाते हो, राइट, वो हरी हरी बातें करते हो, तुम्हें हरी हरी सूझती है, इस तरह की बातें करते हो, ये लैंग्वेज होती थी उनकी, ठीक है, वलन नुमिना लिरुकिय का हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़्रो, और हम नहीं मानेंगे कि इवन अगर तुम चढ़ भी जाओगे ना आसमान के ऊपर, हत्ता के तुम एक किताब लेकर के आओ ऊपर से जिसको कि हम पढ़ भी सकते हो, कुल कह दीजिए इनसे कि पाक है मेरा रब, मेरा रब तो पाक है, हल कुंतु, क्या मैं हूं इल्ला बशर रसूला, सिवाय इसके कि मैं एक रसूल हूं और एक बशर हूं, मैं इसके अलावा कुछ कुछ हूं कि मैं ये सारी चीजें करके दिखाऊं, तो मैं ये तमाशे में कोई नाउजबिल्ला कोई तमाशबीन हूं, तमाशबीन तो नहीं, मैं कोई तमाशे करने वाला हूं, मैं कोई एक्टर हूं कि मैं ऐसी ऐसी चीजें जो मैं जिस तरह वो करतब दिखाने वाले होते हैं ना, करतब दिखाने वाले, राइट, लोग उनसे कहते हैं अब आप हमें ये वाला करतब दिखाएं, जैसे वो जादूगर होते हैं, अब आप जो है ना हमें टोपी में से खरगोश निकाल के दिखाएं, ठीक है ना, अब आप जो है ना अपने मुंह में से आग निकाल करके दिखाएं, तो वो करतब दिखाने वाला इस तरह के करतब दिखाता है, ठीक है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि मैं कोई इस किस्म की हरकतें करने वाला नहीं हूं कि मैं कभी बाग बना के दिखा दूं तुम्हें, कभी जो मैं ऊपर चढ़ना शुरू हो जाऊं, फिर ऊपर से एक किताब लेकर के आ जाऊं, फिर जो है मैं तुम्हें ये, यानी ये मैं ये तमाशे करने के लिए मैं नहीं भेजा गया हूं, मैं तो रसूल हूं, किसका रसूल हूं, खालिक व मालिक का रसूल हूं, ठीक है, उसी ने जो कुछ मुझे बताया है वो मैं तुम्हें बता रहा, बस, ठीक है, वमा मना अन्नास अन युमिनू इज जाअहुमुल हुदा, और नहीं मना किया इंसानों को कि वो मान जाएं इन बातों को जो नबी कहते हैं, सिवाय जबकि उनके सामने हिदायत की चीज आ गई है, यानी दलाइल की ये किताब आ गई है, जिसके अंदर कैसे कैसे दलाइल हैं, अरबी जुबान के दलाइल भी मौजूद हैं, साइंटिफिक मेरिकल्स भी उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना, उनकी अपनी जात के बारे में चीजें मौजूद हैं, उनके जो पीछे की अकवाम गुजरी हैं जिनके बारे में इन्होंने सुन रखा है, उनके बारे में जो है वो तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये चीज जब तुम उनके सामने आ गई है, फिर किस चीज ने उनको मना किया कि वो बात माने नबी की? ठीक है, यानी नबी की बात माने का मतलब क्या कि अब जो नबी उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं उसको छोड़ दें। ठीक है, किस चीज ने उनको मना किया इस बात से, किस चीज ने उनको रोका इस बात से, सिवाय इसके के इल्ला अन कालू अबअसल्लाहु बशर रसूला, कि वो कहते थे कि क्या अल्लाह ताला ने एक बशर को जो है वो रसूल बना करके भेज दिया। ठीक है, यानी उनकी अपने जो कहते हैं ना फितरत की खबासत, ठीक है, अंदर की जो है ना वो एक जिद, अनानियत, जड़, जो भी आप उसको कहें, तो बस ये चीज थी कि जिसने उनको रोक दिया था। दलाइल तो मुकम्मल हो चुके थे, ठीक है ना, शहादतें मुकम्मल हो चुकी थी, हर चीज। जैसे आप किसी जज के सामने जाए ना कोर्ट में, ठीक है ना, अब जज के सामने जो है वो आप सारे एविडेंसेस प्रेजेंट कर दें जो कि आपके केस को सच्चा साबित करते हो, आप सारे प्रूफ्स दे दें जज को जाकर के, लेकिन जज कहे कि नहीं, मैंने फिर भी तुम्हारे हक में फैसला नहीं करना, फिर भी मैंने तुम्हारे हक में फैसला नहीं करना, आपने सारे दलाइल तो दे दिए उसको, अब क्यों नहीं कर रहे भाई मेरे हक में फैसला? बस मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, इस वजह से नहीं कर रहा, राइट? या ये कि तुम इतने गरीब हो, इस वजह से मैं तुम्हारी तुम्हारे हक में फैसला नहीं कर रहा, ठीक है ना, या ये कि तुम्हारी जो जो तुम्हारा खानदान जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं तुम्हारे हक में फैसला नहीं कर रहा। ठीक है, तो यही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि क्या वजह थी कि सब कुछ आने के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम के हक में फैसला नहीं करते थे कि आप असलम अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे हैं, ये बस अंदर की एक थी उनकी अनानियत। कुल लो काना फिल अर्द मलाइकातुन यमशूना, फिर आप ये जो कहते हैं ना कि ये बशर को रसूल बनाने की जो विवाद बात करते हैं ना, क्यों बना दिया, तो आप इनको कह दीजिए कि अगर जमीन के अंदर फरिश्ते चलते फिरते होते ना आराम से, इत्मीनान से चलते फिरते होते, तो फिर हम आसमान पर से एक फरिश्ते को रसूल बना करके भेजते। ठीक है, यानी आप इनको सादा अल्फाज में, सादा अल्फाज में इनको जवाब देते। अगर ऐसा होता तो फिर फरिश्ते होते, क्योंकि ऐसा नहीं है, इस वजह से फरिश्ते नहीं है। तो अब जो है ना इनके मारुफ मसाइल में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि भाई बेसरोपा मुआनिदाना सवालात का पैगंबराना जवाब। ठीक है, ऐसे सवाल जिनका कोई ना कोई सर ना कोई पैर, और बस दुश्मनी की वजह से वो ऐसे सवाल करते थे, तो उनका पैगंबराना जवाब क्या था? आयात मस्कूरा में जो सवालात और फरमाइशें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ईमान लाने की शर्त करार देकर की गई, ठीक है, कि ये शर्त शर्त पूरी करोगे तो हम ईमान लेकर आएंगे, वो सब ऐसी हैं कि हर इंसान उनको सुनकर एक किस्म का तमस्खुर और ईमान ना लाने का बेहुदा बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ना लाने का बस बेहुदा बहाने ही बना सकता है, और इसके अलावा कोई तमीज का तो जवाब मुमकिन ही नहीं है इसका कोई, कि हर इंसान उनको, हाँ, ऐसे सवालात के जवाब में इंसान को फितरतन गुस्सा आता है। ठीक है, यानी जब कोई आपसे इस किस्म के उल्टे सीधे सवालात करता है ना, तो आपको गुस्सा आता है फितरतन, ये इंसान की फितरत में ही गुस्सा होता है, और जवाब भी उसी अंदाज का देता है फिर वो। ठीक है, मगर इन आयात में उनके बेहुदा सवालात का जो जवाब हक तआला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन फरमाया, वो काबिल नजर और मुस्लिहीन उम्मत के लिए हमेशा याद रखने और लाए अमल बनाने की चीज है, कि इन सब के जवाब में ना उनकी बेवकूफ़ी का इजहार किया गया कि किस किस्म के बेवकूफ़ इंसान हो जो इस किस्म के सवाल कर रहे हो, ना उनकी मुआनिदाना शरारत का इजहार किया गया, ठीक है, कि तुम जो है ना वो दुश्मनी की वजह से ऐसे सवाल कर रहे हो, ना उन पर कोई फिक्रा कसा गया, ठीक है, कि तुम, ठीक है, जो जो भी फिक्रा कसना जिसको कहते हैं ये टीजिंग किस्म का, बल्कि नहायत सादा अल्फाज में असल हकीकत को वाज़ह कर दिया गया कि तुम लोग शायद समझते हो कि जो शख्स खुदा का रसूल होकर आए उसे सारी खुदाई इख्तियारात का मालिक और हर चीज पर कादिर होना चाहिए, ये तखय्युल गलत है, ये तुम्हारा ख्याल गलत है, रसूल का काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, अल्लाह ताला उनकी रिसालत को साबित करने के लिए बहुत से मौजजात भी भेजते हैं, मगर वो सब कुछ महज अल्लाह ताला की कुदरत व इख्तियार से होता है। रसूल को खुदाई के इख्तियारात नहीं मिलते, रसूल को खुदाई के इख्तियारात नहीं मिलते कि अभी बाग बना दो, अभी दरख्त बना दो, अभी जो है वो आसमान पे चढ़ जाओ, अभी जो है वो आसमान को टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिरा दो। ये इख्तियारात रसूल को नहीं मिलते। वो एक इंसान होता है और इंसानी कुव्वत व कुदरत से बाहर नहीं होता है, बजुज इसके कि अल्लाह ताला ही उसकी इमदाद के लिए अपनी कुव्वत काहिरा को जाहिर फरमा दे। यानी रसूल जो है वो रसूल बंदगी की इंतहा पर होता है। बंदगी का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला के हर किस्म के हुक्मों की अताअत, आजिजी इनके सारी, और बंदगी की इंतहा क्या है कि अपने अंदर से सारी कुव्वत, सारी सलाहियत, सारी जहानत की नफी कर देना, नफी कर देना अपने अंदर कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हकीकी नफी करना, खाली जुबान से नफी ना करना बल्कि हकीकत में दिल से भी ऐसे ही सोचना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो किसी काबिल नहीं हूं। ठीक है, इसको बंदगी कहते हैं। और ये बंदगी की, यानी बंदगी की समझ ले दर्जे हैं ना, एक बिल्कुल मिनिमम दर्जा बंदगी का ये है कि हाँ भाई नमाज पढ़ ली, ठीक है ना, अपना सर जो है वो जमीन के ऊपर रख दिया, रुकू कर लिया, अपनी कमर को झुका दिया, ठीक है, और जो है वो हाथ बांध के खड़े हो गए, ठीक है, ये बंदगी की एक बिल्कुल इब्तदाई शक्ल है। ठीक है, फिर बंदगी की इसके बाद बेहतर शक्ल क्या है कि नमाज के अंदर जिस तरह से हाथ बांध के खड़े हुए हैं और जो है वो रुकू कर रहे हैं और सजदा कर रहे हैं, नमाज के बाहर भी अल्लाह के हुक्मों के सामने अपने आप को सुपुर्द कर देना। ठीक है, कि जो अल्लाह का हुक्म आएगा मैंने वही करना है, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए आए, चाहे वो नमाज ना पढ़ने के लिए आए। ठीक है ना, मर्दों के लिए तो नमाज ना पढ़ने का हुक्म आता ही नहीं है, लेकिन औरतों के लिए तो आता है ना। ठीक है, कि भाई अब आप नमाज नहीं पढ़ेंगी तो बंदगी क्या है कि नमाज नहीं पढ़ी जाए, तिलावत नहीं करेंगी तो तिलावत नहीं करी जाए। ठीक है, ख्वातीन इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद उनको बाकायदा एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ठीक है, अब फिर यानी नमाज के बाहर भी अल्लाह ताला के हुक्मों के सामने झुकना और उनकी इत्तेबा करना, अल्लाह के हुक्मों की अताअत करना। फिर उसके बाद और दर्जे भी इसके हैं, लेकिन आखिरी दर्जा क्या कि सोच और फिक्र के अंदर, जहन के अंदर बिल्कुल अपने आप को जो है ना किसी काबिल ना समझ, सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही है, जो कुछ भी है, मेरा काम तो बस हुक्म की अताअत करने की कोशिश करना है, मैं कोशिश कर सकता हूँ बस उसके ऊपर बाकायदा, यानी मैं तो अमल भी नहीं कर सकता अल्लाह की तौफीक के बगैर, अल्लाह ताला ने मुमकिन बनाया तब मैं अमल कर सकता हूँ, वरना तो मैं क्या। ठीक है, तो रसूल जो होता है ना वो बिल्कुल आखिरी दर्जे की बंदगी पर होता है। ठीक है, तो उसके पास ये कहाँ से, वो कहाँ से इख्तियारात वगैरह। बहरहाल, तो यहाँ पर जो नबी अलैहिस्सलाम को तरीका बताया गया वो बड़ा सादा तरीके से ना, गोया कि उनको यानी फारिग कर दो, बस इस तरह से बात करके फारिग कर दो कि भाई जो है ना वो रसूल तो उस वक्त नबी, सॉरी फरिश्ता तो उस वक्त रसूल होता है ना जब जमीन के अंदर फरिश्ते रह रहे होते। ठीक है, तो गुस्से में आकर के उनको जवाब नहीं दीजिए, बल्कि सादा सीधा सादा जो है ना वो उनको जवाब दे दीजिए, बेशक वो नहीं मानेंगे आपका जवाब। ठीक है ना, बेशक उनका जो है ना वो रिस्पॉन्स जो होगा वो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो आपके सवाल के ऊपर जो है वो अंगुष्ट बदन दां रह जाए, हैं अपनी उंगली को जो है वो दांत में दबा करके हैरान रह जाएंगे, आपने कितना इंटेलेक्चुअल जवाब दिया है, आपने कितना जो है वो इल्मी जवाब दिया है, कितना जो है ना वो आपने साइंटिफिक किस्म का जवाब दिया है। नहीं, ऐसा आपका तो जवाब बिल्कुल सादा सा है, उनके ऊपर कोई टस से मस नहीं होंगे आपका जवाब सुनकर के, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको यही जवाब दें बस। ठीक है, अच्छा, अल्लाह का रसूल इंसान ही हो सकता है, फरिश्ते इंसानों की तरफ रसूल नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगले उनवान में मुसे शफी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि आम कुफार मुश्रिकीन का ख्याल था, आम कुफार मुश्रिकीन का ख्याल था कि बशर यानी आदमी आदमी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। बशर का जो लफ्ज है उसकी एक तफसीर जो है ना वो ये बयान की जाती है कि ये बा और शर का जो है वो मजमुआ है, शर के साथ। ठीक है, बा कम इल्साक के लिए होता है या इल्हाक के लिए होता है, जिस तरह बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ, तो उसके अंदर भी जो बा है ना तो यहाँ पे वही वाला बा है। और शर का लफ्ज जो है उसका मतलब ये होता है कि बुराई, खराबी। ठीक है, तो बशर इस तरह से बना। तो अल्लाह ताला ने इवन अपने नबियों के लिए बशर का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, कैसे बशर, नबी कैसे बशर? इसलिए नहीं कि नबी जो है वो गुनाह करते हैं, नबी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, जिसको के शर का आम मानी समझा जाता है। ठीक है, नहीं, नबी के अंदर तो अल्लाह ताला ने ये सिफत ही नहीं रखी ना। ठीक है, कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करें। नबी इसी वजह से मासूम होते हैं, मासूम कि गुनाह कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर शर कैसे? भाई अल्लाह ताला ने जो हमारी जो फिजिकल बॉडी बनाई है ना, इस फिजिकल बॉडी के अंदर जो है वो चीजें ऐसी मौजूद हैं जो कि नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं, हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर, हमारे खमीर के अंदर ही, हर इंसान के। ठीक है, तो अब जो आग, मिट्टी, हवा, पानी, ठीक है ना, मिट्टी से अल्लाह ताला ने सिर्फ आम इंसानों को नहीं बनाया, मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी बनाया, राइट? और आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें हैं, चाहे वो नबी हो चाहे वो गैर नबी हो, वो सब के सब जो है वो मिट्टी के खमीर से ही बने ही। ठीक है, तो अब मिट्टी के अंदर तो यानी वो नूरानी चीजें तो नहीं है ना। ठीक है, नूरानी चीजें जो है वो तो रूह से आती हैं, जो कि मिन अम्र रब्बी। ठीक है, लेकिन मिट्टी वगैरह जो है ये सब तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया की चीजों के अंदर बनाई है ना। तो इस तरह से भी इवन चाहे इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो, कितना ही जो है वो मासूम क्यों ना हो, लेकिन उसकी फिजिकल साख के अंदर तो फिर शर की चीजें होती हैं। और ये इवन यानी आपके जो गोश्त पोश जो बन जाता है तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया वगैरह किस्म की जो चीजें होती हैं, तो ये भी मौजूद है हर इंसान के अंदर। बहरहाल, तो बशर का जो लफ्ज है अल्लाह ताला ने, अगर ये वही बा और शा शर वाला जो मानी दिया जाए, तो फिर वो लफ्ज अल्लाह ताला ने इवन नबियों के लिए भी इस्तेमाल किया है। और आदमी का लफ्ज जो है ये आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत से हर आदम अलैहिस्सलाम के औलाद को कहा जाता है। तो मैं तो बशर यानी आदमी अल्लाह का रसूल, ये कहते थे कि बशर यानी आदमी अल्लाह का रसूल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हमारी तरह तमाम हवाइज इंसानी का आदि होता है। यानी जो इंसानी जरूरियात होती हैं, हाजतें होती हैं, तो उनका वो आदि होता है। तो ये एक है ना, एक एक लिमिटेशन है ना हर इंसान की, चाहे वो नबी क्यों ना हो। फिर उसको हम पर क्या फौकियत हासिल है कि हम उसको अल्लाह का रसूल समझें और अपना मुक्तदा बना लें, यानी ऐसा शख्स बना लें कि जिसकी हम पीछे 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 चलें। मुक्तदा लीडर को कहते हैं, उसको हम अपना लीडर बना लें। इनके इस ख्याल का जवाब कुरान करीम में कई जगह मुख्तलिफ उनवानात से दिया गया है, मुख्तलिफ टाइटल से जो है वो, यानी मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला ने इसी बात का जवाब दिया है। यहाँ आयत मा मना नास में जो जवाब दिया गया है, इसका हासिल ये है कि अल्लाह का रसूल जिन लोगों की तरफ भेजा जाए वो उन्हीं की जिन्स में से होना जरूरी है। अगर ये आदमी हैं तो रसूल भी आदमी होना चाहिए, क्योंकि गैर जिन्स के साथ बाहम मुनासिबत नहीं होती। ठीक है, जो आपकी जिन्स ना हो तो उसके साथ बाहम मुनासिबत नहीं होती। भाई गैर जिन्स की जो होती हैं वो अलग जरूरियात होती हैं, अलग माहौल होता है, अलग उसकी जो है वो सलाहियतें होती हैं, आपकी अलग होती हैं। तो अब आप उसके साथ जो है ना वो यानी एक मुनासबत नहीं आप फील करते हैं उसके साथ। ठीक है, बिला मुनासबत के रुश्द व हिदायत का फायदा हासिल नहीं होता। ठीक है, कि भाई वो तो जैसे मिसाल के तौर पर कोई अगर बहुत ताकतवर किस्म का कोई जानवर हो, तो वो तो अपनी ताकत की वजह से फलाने काम कर लेते हैं ना। अब मैं तो इंसान हूँ, मेरे पास कोई ताकत है ही नहीं, तो मैं ये कैसे काम करूँ? ठीक है, कोई शख्स जो है वो कोई 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 इंसान जो है वो बहुत ही सॉरी यानी जो भी आप कह लें, फरिश्ता कह लें, जिन कह लें, भाई जिन है ये तो उड़ता फिरता है, ये तो जो है ना वो आंखों से ओझल भी हो जाता है, मैं तो ना उड़ सकता हूँ ना तो मैं आंखों से जो है वो ओझल हो सकता हूँ, तो अब मैं कैसे उसको फॉलो कर सकता हूँ? है, तो ये गर्जन से यहाँ पर जो है वो ये मुराद है। तो मुलाजमत के बगैर रुश्द हिदायत का फायदा हासिल नहीं होता। अगर आदमियों की तरफ किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेज दें जो ना भूख को जानता है, ना प्यास को, ना जिनसी ख्वाहिशात को, ना सर्दी गर्मी के एहसास को, ना उसको कभी मेहनत से थकान लाहिक होती है, तो वो इंसानों से भी ऐसे ही अमल की तवक्को रखता, उनकी कमजोरी व मजबूरी का एहसास ना करता। ठीक है, वो उनकी कमजोरी और मजबूरी का एहसास ना करता। ठीक है, इसी तरह इंसान जब ये समझते कि ये तो फरिश्ता है। ठीक है, इन्होंने एक जो सवाल लिखा है डायरेक्ट मैसेज में कि जिन्नात के नबी इंसान ही है, इस मामले में थोड़ी वजाहत आगे आ रही है, तो उस वक्त फिर इसके ऊपर थोड़ी और बात भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कि जब ये समझते कि ये फरिश्ता है, हम उसके कामों की नकल करने की सलाहियत ही नहीं रखते, तो उसकी इत्तबा खाक करते फिर। ठीक है, ये फायदा इस्लाह और रुश्द हिदायत का सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि अल्लाह का रसूल हो तो जिनसे बशर से, जो तमाम इंसानी जज्बात और तबीयी ख्वाहिशात का खुद भी हामिल हो, मगर साथ ही उसको एक शान मलकियत की भी हासिल हो कि आम इंसानों और फरिश्तों के दरमियान वास्ता और राबते का काम कर सके। ठीक है, यानी इंसानों के साथ उसकी मुनासबत हो, लेकिन साथ साथ जो है ना वो रसूल ऐसा होना चाहिए, अल्लाह का रसूल, ठीक है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको फरिश्तों से भी थोड़ी मुनासबत। ठीक है ना, यानी दरमियान का होने के लिए जो है ना, आपको इधर से भी मुनासबत होनी जरूरी है और उधर से भी मुनासबत होनी जरूरी है। ठीक है ना, जैसे आप ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, अब ब्रिज जो है वो जैसे इस तरफ जो है वो शहर है और दूसरी तरफ जो है वो जंगल है। ठीक है, तो अब ब्रिज का जो शहर वाला हिस्सा होगा ना, तो उसके अंदर जो है वो शहर की तरह की चीजें उस ब्रिज के अंदर लगानी पड़ेंगी। ठीक है, ताकि जो है वो बिल्कुल एक अलग किस्म की कोई चीज ना लगे। और जो जंगल की साइड है उस ब्रिज की, तो वहां पर जो है ना वो थोड़ा सा आपको नेचर से रिलेटेड चीजें जो है वो ब्रिज के अंदर लगानी पड़ेंगे, ताकि वो उसके अंदर मोल्ड हो जाए, उसके अंदर ब्लेंड हो जाए। ठीक है, तो इस एंड और इस एंड दोनों के साथ उस ब्रिज को कुछ ना कुछ मुनासबत होगी। तो अब ये रसूल जो होते हैं, ये फरिश्ते और इंसान, इन दोनों के दरमियान ब्रिज हो। ठीक है, और फरिश्ता जो होता है वो गोया के वो अल्लाह ताला के साथ उसका उसका कनेक्शन होता है, तो उसको एक शान मलकियत की भी हासिल हो, फरिश्तों वाली शान भी हासिल हो कि आम इंसानों और फरिश्तों के दरमियान वास्ता और राबते का काम कर सके, वही लाने वाले फरिश्तों से वही हासिल करे और अपने हम जिन्स इंसानों को पहुंचाए। थोड़ा कंप्यूटर की जुबान में इसको इंटरफेसिंग भी कहा जाता है, इंटरफेस। जैसे अगर आप अपने लैपटॉप के साथ जो है ना वो प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर्स में काम किया है तो वो जानते हैं इस बात को कि आपके कंप्यूटर के साथ जो है ना वो, अगर आपको कंप्यूटर की कोई चीज प्रिंट करनी है, तो प्रिंटर के अंदर एक 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 तार होती है। ठीक है, एक तार होती है जो कि आप एक तरफ से प्रिंटर में लगाएंगे और दूसरी तरफ से आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे। ठीक है ना, अब आपने देखा है कि लैपटॉप की साइड पे जो तार का, बल्कि प्रिंटर केबल्स ज्यादा बेहतर मिसाल जो है वो हमारे लिए, जो कि हम सभी करते हैं, आप सब भी करती होंगी, वो है फोन चार्जर। ठीक है, फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो उसके चार्जर के जो एंड फोन के अंदर जाती है, वहां पे फोन की तरह का एक कनेक्टर होता है, सी टाइप कनेक्टर हो या किसी और किस्म का यूएसबी कनेक्टर हो, और जो तार का हिस्सा इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर लगता है, तो वहां पे एक अलग किस्म का एडाप्टर होता है, एक एडाप्टर होता है जो कि आपके जो घर के अंदर बिजली आ रही है उस बिजली को एडाप्ट करके जो है ना वो इतना कम कर दे कि आपका फोन जो है ना वो उससे चार्ज हो जाए और जले भी ना। ठीक है ना, तो उधर से आई हुई बिजली को जो है ना वो टोन डाउन करके फोन के काबिल बनाता है। ठीक ठीक है, तो ये इंटरफेस केबल कहलाती है। इलेक्ट्रिक इंटरफेस केबल भी होती है, डेटा इंटरफेस केबल भी होती है, ठीक है, तो दोनों तरफ से, तो ये इंटरफेसिंग कहलाती है। ठीक है, तो रसूल भी जो है तरफ से इंटरफेसिंग का ही काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि जिसमें जो है ना वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम ये करते हैं कि रसूल की मासूमियत या रसूल को जो मुआवजे मिलते हैं ना, तो वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तयशुदा है, ठीक है ना, कि भाई रसूल को अल्लाह ताला ने मासूम बनाया, रसूल को अल्लाह ताला ने जो है ना वो मुआवजे अता किए, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला ने अपने रसूल को जो चीजें अता करी है ना, तो भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो हमारा भी पता है ना कि हमारे लिए वो बातें जो रसूल को अल्लाह ताला ने एडिशनल अता करी है, हमसे ऊपर अता करी है, ठीक है ना, जो मौजे हमारे पास नहीं है, हमारे पास मौजों की सलाहियत नहीं है, हमारे पास मासूम होने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। तो भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो हमारे बारे में ये बात पता है कि हमारे अंदर किसी सलाहियत का ना होना ये नुकसानदेह नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो रुकावट बन जाए रसूल से फायदा उठाने के अंदर, वो रुकावट बन जाए, ठीक ना, कि भाई हम कहें कि भाई मैं कैसे रसूल की इत्तबा कर सकता हूँ, मैं तो मौजे कर ही नहीं सकता, रसूल तो मौजे कर सकते हैं, तो इस वजह से मुझे तो रसूल से मुनासबत हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। हम इस तरह से बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ही डिजाइन किया है, रसूल को डिजाइन किया है मौजों और मासूमियत के साथ, हमें डिजाइन किया है अल्लाह ताला ने बगैर मौजों और बगैर मासूमियत के, ठीक है ना भाई, ये तो क्रिएटर का काम है ना, ठीक है ना, तो क्रिएटर तो जैसा हम हैं वह उसके बिल्कुल मुनासिबत से काम करते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो बात चल जाती है, लेकिन हमसे गलती क्या हो जाती है कि हम रसूल को जो है ना वो अपनी तरफ से भी जो है ना वो चीजें देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि आलमुल गैब, राइट, रसूल जो है वो आलमुल गैब है, हर चीज का इल्म रखने वाले, ठीक है, या ये कि रसूल जो है वो तो नूर है, बशर है ही नहीं, वो तो नूर है, या ये कि रसूल जो है वो तो हर जगह हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं और मौजूद भी हैं। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहाँ कहा कि रसूल जो है वो हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, मौजूद भी हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहाँ फरमाया कि भाई रसूल जो है ना वो आलमुल गैब है, ठीक है ना, ये तो हमने अपनी तरफ से लगा दिया ना ये चीजें। अब हमने जो अपनी तरफ से चीजें लगाई है ना, ये तो ऐसी नहीं थी कि जिससे कि हमें नुकसान ना हो, ठीक है, तो ये तो फिर हमने गुलू कर लिया ना रसूल के मामले में, अपनी तरफ से चीजें ऐड कर ली ना। अब इसका नुकसान ये होता है कि फिर रसूल के शान में नाते तो बड़ी कह देते हैं, और ऐसी ऐसी नाते होती हैं कि आप यानी हैरान रह जाएं कि नात कहने वाले शायर ने कहाँ से जा करके ये अल्फाज लेकर के आए, ठीक है ना, ऐसी ऐसी नातें होती हैं कि जबरदस्त किस्म की रसूल की शान में जो है वो नातें, लेकिन इत्तेबाए रसूल वो नदारत, ठीक है ना, रसूल के हुक्मों की इत्तेबा वो खत्म, वो नहीं हो सकती फिर उसके बाद। इसी वजह से ऐसी जगहों पे जहां पर के बिदात और खराफात होती हैं, जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुलू का मामला होता है ना, वहां पर आपको इत्तेबाई रसूल नजर नहीं आएगी, वहां पे आपको शरीयत जो रसूल लेकर के आए उसकी अताथ नजर नहीं आएगी, वहां पे आपको नातें बड़ी अच्छी नजर आएंगी, ठीक है, और नात वालों के ऊपर जो है वो निछावर करने के हरकतें बहुत नजर आएंगी कि वो नात खा जो है वो अपने धुन में जो है वो नात पड़े जा रहे हैं और ऑडियंस से लोग आ रहे हैं, और अच्छा नोट उनके ऊपर जो है ना, हमने थोड़ा यूट्यूब आजकल वाले साहब के लिए जरा नात वगैरह का भी लगाते हैं, तो देखा कि वो आकर के नोट निछावर करते हैं, तो भाई नोटों की एक गड्डी लेकर के आए ना, तो वो गड्डी ला करके पूरी की पूरी उनके ऊपर सामने नहीं रख देते, बल्कि ऐसे ऐसे एक एक है ना, जैसे कोई ताश के पत्ते नहीं निकाले जाते हैं, उस तरीके से एक नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा नोट, यानी एक तमाशा है कि भाई नोट देने उनको लाकर उनकी गोद में रख दो बस और चले जाओ वापस जाकर के अपनी जगह पे बैठ जाओ, नहीं, एक एक बंदा आता जाएगा और गड्डियों में से है ना वो ताश के पत्तों की तरीके से नोट उनके ऊपर गिराता जाएगा, गिराता जाएगा, गिराता जाएगा, ठीक है, तो ये तमाशे शुरू हो जाते हैं। अतात और इत्तेबा ये रह जाती है फिर सारी की सारी, क्योंकि गुलू कर दिया ना, आप अपने अपनी तरफ से जो है वो चीजें बना दी हैं। ठीक है, तो यही मामला जो है वो हम अपने मशाइख के साथ करते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जिनको हम बरेलवी कहते हैं, बिदती कहते हैं, तो वो तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुलू करते हैं। ठीक है ना, हम जो कि अपने आप को सो कॉल्ड देवबंदी कहते हैं, अकाबिर उलमाए देवबंद, ठीक है ना, जो कि वाकई उन्होंने इल्म की हिफाजत करी और दीन की हिफाजत करी और बेहतरीन जबरदस्त उन्होंने दीन को जिस शक्ल में पाया वैसा ही जो है उसको प्रिजर्व किया। लेकिन हम जो उनके नाम लेवा हैं, राइट, हम जो उनके नाम लेवा हैं, जो अपने आप को देवबंदी कहते हैं, हमने भी गुलू किया, हमने भी गुलू किया यानी हमने भी चढ़ाया, लेकिन किसको चढ़ाया? हमने नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं चढ़ाया, राइट, बरेलवियों ने तो नबी अलैहिस्सलाम को चढ़ा दिया ना, हमने तो अपने उलमा और अपने मशायख को चढ़ा दिया। ठीक है ना, यानी उन्होंने तो 1400 साल पहले जो अल्लाह के रसूल थे उनको चढ़ाया, हमने तो इस सदी के जो थे ना हमने उनको चढ़ा दिया। तो गलत तो दोनों ने काम किया, लेकिन ज्यादा गलत कौन था, ज्यादा गलत कौन था इसमें, कौन ज्यादा गलत है? वो ज्यादा गलत है कि हम ज्यादा गलत है? गलत तो दोनों है, लेकिन इसमें तो नाम लेवा, सो कॉल्ड देवबंदी, राइट, हम ज्यादा गलत हो गए ना। ठीक है, तो वही बात है ये, यानी एक तरह से वही कि भाई काफिर बुरा काम करता है तो काफिर है ना, इस वजह से वो बुरा काम करता है। तुम तो ईमान वाले थे, जब तुमने बुरा काम शुरू कर दिया तो फिर तुम्हें तो ज्यादा जल्दी सजा मिलती है ना, फिर तुम्हें तो ज्यादा बुराई है ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारी हिदायत मौजूद थी, तुम्हारे पास तो जो है कुरान मौजूद था, तुम्हारे पास तो नबी सुन्नत मौजूद थी, तुम क्यों काफिरों की तरह से काम कर रहे हो? ठीक है ना, तुम्हारे पास तो इल्म था, तुमने क्यों किया फिर ऐसा काम? यही मामला हमारा और उनका भी है। वो तो जाहिल बिल्कुल, उनके पास ना इल्म, ना उनके पास जो है वो किताब, ना उनके पास जो है फिका, ना उनके पास जो है वो तफसीर, ना हदीस, वो बेचारे ऐसे ही बस अपने पान खाते हैं मुंह के अंदर और जो है वो नाते पढ़ते हैं और रंगरलियां मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को। हम तो जी बा माशाल्लाह तफसीर भी पढ़ रहे हैं और मदारिस में भी जा रहे हैं और आलिम भी बन रहे हैं, आलिमा भी बन रहे हैं, और उसके ऊपर फिर हम इस किस्म की हरकतें करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर ज्यादा बड़ा ब्लेम आएगा। ठीक है, ये गुलू जो है ना, इसका नुकसान ये होता है कि अतात और इत्तेबा खत्म हो जाती है। फिर अब हम अपने किसी को यानी अलकाबात, लंबे चौड़े अलकाबात, लंबे चौड़े ना, वो तो नाम ही नहीं आता पहले जो है वो, पता नहीं वो महबूबुल उलमा वस्सुलहा वल ये वल वो वल फलाना, यानी लंबी सी एक लाइन होती है, आखिर में जाकर के पीर साहब का नाम आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ जो है ना फिर बस जुबान दानियां होती हैं बस, और जो पीर साहब का जो जिंदगी का मकसद था, जो उन्होंने जो है वो चीजें सिखाई, जो उन्होंने जो है वो करने के लिए कहा, जो उन्होंने जिससे बचने के लिए कहा, जो उनकी जिंदगी की तरजीहात हैं, जो उनका जिंदगी का मकसद है, जो उनकी फिक्र है, जो उनकी सोच है, जहन्नुम में गई सारी की सारी, राइट, बहाड़ में गई सारी की सारी। ठीक है, उससे हमें क्या लेना देना? ठीक है, बाज बरेलवी तो अपने पीरों को सजदा तक करते हैं, उन्होंने पीरों को भी खूब चढ़ाया। हम शायद बरेलवियों से मुतासर हैं आजकल। जी डेफिनेटली, हम बहुत ज्यादा मुतासर हैं बरेलवियों से, बहुत ज्यादा मुतासर। ठीक है, वो एक दोस्त थे, जब हमारे हजरत के साथ उनका ताल्लुक हुआ ना, तो वो बताने लगे कि पहले उनका एक बरेलवी, यूरोपियन बरेलवी साहब से ताल्लुक था। तो कहते हैं कि वो जो है ना, पहले वो सजदा करते थे अपने यूरोपियन बरेलवी पीर साहब को, वो सजदा करते थे, लेकिन उनके यहाँ सजदे का तरीका ये होता था कि उन्होंने ना अपने एक पैर को, पैर उठा देते थे पीछे से, एक पैर जो है ना जमीन से उठा देते थे, तो उसके ऊपर यानी वो उनकी तरीका था कि भाई ये जो है ना, ये नमाज के सजदे से एक अलग सजदा है, जो पीर को सजदा किया जाता है ना, ये नमाज वाला सजदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पैर उठा देते। ठीक है, वो लोग करते थे सजदा वाकई, इस कॉन्टेक्स्ट में उलमा को चढ़ा दिया है, ये समझ नहीं आया। उलमा और मशायख के साथ क्या करते हैं देवबंदी? इतना तो बोला है आपको कि भाई वो अलकाबात करते हैं, उनके जो है वो बस तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। जैसे बरेलवी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शान में जो है ना वो कसीदे कहना और जो है वो लाइटें लगाना और जो है वो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकालना और शोर मच, यानी वो अभी घर वाले बता रहे थे, हम पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए रहे थे, 2015 की बात है, तो 12 रबीउल अव्वल आ गया था बीच में, तो इतना लाउड स्पीकर के ऊपर जो नातें लगाई हुई थी, पूरा मोहल्ला जो है ना वो जाग रहा था उनकी वजह से, क्योंकि इतना लाउड आवाज के साथ जो है वो आप सो ही नहीं सकते रात के वक्त। तो अब ये नबी अलैहिस्सलाम का तो हुक्म तो नहीं है ना कि भाई आप लोगों को जो है जगा करके रखें सारी रात, इस वजह से कि आप आशिक रसूल हैं सो कॉल्ड, इसी तरह की हरकतें जो है फिर हम इसमें भी कर रहे हैं। एनीवे, इस तकरीर से ये शुबा भी दूर हो गया कि जब इंसान फरिश्ते से फैज हासिल नहीं कर सकता तो फिर रसूल बावजूद इंसान होने के किस तरह उनसे फैज वही हासिल कर सकेगा। ठीक है, अल्लाह ताला रसूल को ऐसा बनाते हैं, ऐसी मलकूती सिफात उसको अता फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की तो तफसीलात हमारे सामने है ना, बाकी रसूलों की इतनी ज्यादा तफसीलात हमारे सामने नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलाम की तफसील को देख करके हम समझ सकते हैं कि बाकी नबियों के साथ भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे ही मामला किया होगा, ठीक है, जब भी तो वो भी रसूलों से फैज हासिल करते थे। नबी अलैहिस्सलाम की तफसीलात क्या हमारे सामने हैं कि पहले तो नबी अलैहिस्सलाम के जो कल्ब मुबारक होता है उसको शक्क सदर के जरिए से कम अज कम 2 मरतबा तो धोया गया, और कुछ मशायख ने तो बाकायदा 4 मरतबा शक्क सदर का वाकया लिखा है, 4 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक को चाक किया गया, दिल मुबारक को जो है वो जमजम के पानी से धोया गया। और यानी एक तो ये हुआ, फिर उसके बाद के जब वही आई है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो जो बुखारी शरीफ की तफसीली हदीस मौजूद है उसके बारे में कि फरिश्ते ने आकर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी अलैहिस्सलाम को भेजा, जो इतनी सख्ती के साथ 3 मरतबा भेजा है, तो उसकी यही तफसील हमारे मशायख ने बयान करी है कि जो फरिश्ते की सिफात थी वो नबी अलैहिस्सलाम के अंदर मुंतकिल हो रही, ठीक है, निस्बत जो है ना वो बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक के अंदर डाली जा रही थी, जब 3 दफा भेज लिया उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम अता होना शुरू हुआ, और उस 3 दफा के अंदर नबी अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दरमियान निस्बत इत्तेहादी पैदा हो चुकी थी, निस्बत इत्तेहादी जो कि बिल्कुल यानी बराबर कर देती है, ठीक है, शेख को अपने मुरीद के साथ या साले के साथ जो है वो निस्बत इत्तेहाद मिलने के बाद मुमासरत पैदा हो जाती है, ठीक है। बहरहाल ये तफसील दूसरे मौकों पे हम कई दफा कर चुके हैं एक्चुअली, तो इसी को मजीद पढ़ना हो तो किताब भी मौजूद है इसके इसके साथ। तो इस तकरीर से शुबा भी दूर हो गया कि जब इंसान फरिश्ते से फैज हासिल नहीं कर सकता तो फिर रसूल बावजूद इंसान होने के किस तरह उनसे फैज वही हासिल कर सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसको अता करते हैं निस्बत फरिश्ते के साथ। रहा ये शुबा कि जब रसूल और उम्मत में मुजानसत शर्त है या मुमासलत या मुनासबत शर्त है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात का रसूल किस तरह बनाया गया, क्योंकि आपने ये सवाल अभी ऊपर किया था, तो उसको आज क्लास में हम पढ़ लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात का रसूल किस तरह बनाया गया। जिन्नात तो इंसान के हम जिन्स नहीं है, तो जवाब ये है कि रसूल सिर्फ इंसान नहीं बल्कि उसमें एक शान मलकियत की भी होती है, इसकी वजह से जिन्नात को भी मुनासबत इनसे हो सकती है, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को तो काफी मुख्तलिफ बनाया, ठीक है ना, है तो दोनों जमीन के रहने वाले, इस तरह से दोनों के अंदर ये बात तो कॉमन है, दोनों ड्वेलर्स ऑफ प्लैनेट अर्थ हैं, ठीक है, इंसान भी और जिन भी, इंसानों को भी एक जमीन की चीज से बनाया जिसको आग कहते हैं, ठीक है, और इंसानों को सॉरी जिन्नों का अल्लाह ताला ने आग से बनाया, ये भी एक जमीन की चीज है, और इंसानों का अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, ये भी एक जमीन की चीज है। इंसानों के अंदर आग की भी थोड़ी सी खमीर मौजूद है, आग का भी मौजूद है, अगरचे कि मिट्टी जो है वो गालिब है, जिन्नों के अंदर भी मिट्टी भी मौजूद है लेकिन आग गालिब है, तो ये भी एक कॉमनैलिटी है इंसानों और जिन्नों के दरमियान, ठीक है ना, लेकिन इंसानों और जिन्नों के दरमियान जो है वो एक और भी कॉमनैलिटी है कि इन दोनों के अंदर जो है ना, वो अल्लाह ताला ने सलाहियत पैदा करी है कि ये अता करके अपने अंदर जो है ना एक साबित कदमी पैदा कर सकते हैं, बंदगी करके ये अपने अंदर एक साबित कदमी पैदा कर सकते हैं। साबित कदमी का मतलब ये होता है कि आप जम जाएं किसी बात के ऊपर। साबित कदमी का मतलब क्या होता है? जम जाना, ठीक है। इसका रिवर्स, इसका ऑपोजिट क्या होता है कि डोलते रहना, कभी इधर कभी इधर, कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन, डोल रहे हैं, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए। साबित कदमी का मतलब ये होता है कि आप एक ही चीज के ऊपर पक्के हो जाए। ये सिफत अल्लाह ताला ने, बल्कि ये इस्तेदाद अल्लाह ताला ने इंसानों में भी रखी है और जिन्नों में भी रखी है, ठीक है। तो इस तरह से ना इंसान और जिन्नों के दरमियान कॉमनैलिटीज बनती हैं, लेकिन ऊपर जाकर के जो जो मिलती है ना वो बात, वो साबित कदमी के जरिए से मिलती है। कि देखिए, साबित कदमी जो है ना, ये किसकी सिफत है? साबित कदमी किसकी सिफत है? ये है फरिश्तों की सिफत, ठीक है ना। फरिश्ते जो हैं वो बाय डिफॉल्ट साबित कदम होते हैं, वो डोलते नहीं रहते, वो अतात के ऊपर पक्के होते हैं फरिश्ते, ठीक है। तो हजरत यहाँ पे लिख रहे हैं कि रसूल सिर्फ इंसान नहीं होता, बल्कि उसके अंदर शान मलकियत की भी होती है। इसकी वजह से जिन्ना, यानी मलकियत की शान मतलब फरिश्तों वाली शान, यानी साबित कदमी, ठीक है। तो जिन्नात को भी उनसे मुनासबत हो सकती है इंसानों के साथ, ठीक है। तो गोया के ये समझ लें कि अच्छा, अब अगर ये जो हजरत ने यहाँ पे दलील लिखी है, जो कि साजिश ने इस तरह से आपको समझाया, ये अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है, कि भाई साबित कदमी वाली शान जो है वो जिन्नों के अंदर भी होती है, इंसानों में भी होती है, और फरिश्तों के अंदर, ये फरिश्तों वाली शान, ठीक है, तो फिर तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए था कि इंसानों के लिए भी जो है वो जिन नबी बनाए जाते, ठीक है ना। भाई अगर जिन्नों के लिए इंसान नबी बनाए गए, तो इंसानों के लिए जिन भी नबी बनाए जाने चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो मुमासलत जो है वो तो फिर दोनों तरफ है ना, बोथ साइड्स, राइट। इधर से इधर मुनासबत है, उधर से इधर मुनासबत है, और दोनों को ऊपर फरिश्तों से मुनासबत है। तो इसका क्या जवाब होगा कि इंसानों को तो जिन्नों के लिए नबी बनाया गया, लेकिन जिन्नों को इंसानों के लिए नबी नहीं बनाया गया, ठीक है। इसका क्या जवाब है कोई अगर आपने से देना चाहे? आपने अच्छा, यह इन्होंने क्या लिखा, आपने बताया था कि इंसान मिट्टी, पानी, हवा और आग की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, इंसान ज्यादा है, इंसान ज्यादा नहीं है, ये नहीं पता हमें कि इंसान ज्यादा है कि जिन ज्यादा है, अल्लाह की मर्जी। बड़ा अच्छा जवाब है वैसे, ठीक है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो इंसान को देखते हैं और हम नहीं उनको देख सकते। माशाल्लाह, ये भी बड़ा अच्छा जवाब है वैसे, कि हम उनको देख नहीं सकते, वो हमें देख सकते हैं, ठीक है। तो नबी या मुक्तदा या लीडर तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि नजर आए, ठीक है ना। अब हमें तो वो नजर नहीं आते, जब वो चाहते हैं छुप जाते हैं, लेकिन खैर वो कह सकते हैं अगर नबी होते तो फिर वो नजर आ रहे होते वगैरह। देखें, सीधी सी और सादी सी बात यही है कि ज़ालिक फ़ज़लुल्लाही युतीही मन यशा, ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसको चाहता है वो देता है। तो अल्लाह ताला ने ये पसंद फरमाया कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया जाए, ठीक है ना, इंसान को ऊपर रखा जाए, जिन्नों को नीचे रखा जाए, इंसान को फजीलत दी जाए, जिन्नों को जो है ना वो ताबे रखा जाए, ठीक है। तो अब जो है ना, वो इंसानों में ऐसी एडिशनल सिफात अल्लाह ताला ने रखी हैं कि जो कि जिन्नों के अंदर नहीं रखी, और जिन्नों के अंदर जो एडिशनल सिफात रखी है ना, उनकी कीमत ज्यादा नहीं है। वो हैं तो एडिशनल कि वो छुप सकते हैं, वो उड़ सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी बच्चे को जो है वो कुछ खिलौने दे दें, तो भाई ज्यादा खिलौने उसके पास हैं, तो उसका मतलब ये कोई थोड़ी है कि बच्चा जो है ना वो ज्यादा अफजल हो गया अपने अम्मा अब्बा से। खिलौने ज्यादा हैं उसके पास, खेलने की चीजें उसके पास ज्यादा हैं, ठीक है ना। वो ज्यादा उछल कूद कर सकता है, अम्मा अब्बा उछल कूद नहीं कर सकते, तो इस वजह से बच्चा जो है वो अफजल हो गया। नहीं, उछल कूद की तो कोई, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं। फजीलत का मैयार उछल कूद करना कोई थोड़ी होता है। तो अब जिन्नों को जो उछल कूद की सिफात अता की गई है, ये कोई फजीलत के मेयार पे थोड़ी है, हमारे नज़दीक भी ये तो फजीलत के मेयार नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फजीलत इंसान को अता फरमाई है, बेशक उसके उनके अंदर ऐसी चीज़ें कुछ हैं जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास भी जो है ना वो उनके पास नहीं है, और वो ज़्यादा फजीलत वाली चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और उनके औलाद को दी हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ओवर हो चुका है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।